Thank you. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज का स्कंद 3 अध्याय 22 और श्लोक संख्या है 35।
इसका अनुवाद पढ़ेंगे। फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंच आया किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मन्वंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण चिंतन लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की तुरंत का तैयार भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है, किंतु यदि उसे 3-4 घंटे बाद खाया जाए तो वह बासी और स्वादहीन हो जाता है। अतः जब तक जीवन में ताजगी है तब तक भौतिक सुख है, किंतु जीवन के अंत समय प्रत्येक वस्तु नीरस व्यर्थ तथा कष्टकारक लगती है। किंतु सम्राट स्वयंभू मनु का जीवन नीरस नहीं था, वृद्ध होने पर भी उसमें प्रारंभिक जीवन की सी ताजगी थी, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण भावना भवित बने रहे। कृष्ण भक्ति में रहने वाले मनुष्य का जीवन सदैव ताजा बना रहता है। कहा जाता है कि सूर्य प्रातकाल उदय होता है, सायंकाल अस्त होता है और उसका कार्य प्रत्येक प्राणी के जीवन की अवधि को घटाना है। किंतु जो प्राणी कृष्ण भक्ति में रत है उसके जीवन को सूर्य उदय तथा सायंकाल घटा नहीं पाते। स्वयंभू मनु का जीवन कुछ काल बाद नीरस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह निरंतर भगवान विष्णु का जप तथा ध्यान करते रहे। वे महानतम योगी थे क्योंकि अपना समय नष्ट नहीं करते थे। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि विष्णु कुर्वतो ब्रुवता कथा। जब वे कुछ बोलते थे तो भगवान के विषय में, जब भी कुछ सुनते थे तो भगवान के विषय में, और जब भी ध्यान धरते थे तो कृष्ण और उनके कार्यकल्पों के संबंध में। कहा गया है कि उनकी आयु अत्यंत दीर्घ अर्थात 71 युग थी। एक युग 43,20,000 वर्ष के तुल्य है। ऐसे 71 युग मनु की आयु थी। ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु आते हैं जाते हैं। इस प्रकार अपने पूरे जीवन काल 43,20,000 को 71 से गुना वर्ष में मनु कृष्ण का कीर्तन श्रवण कथन तथा ध्यान करते रहे। उनका जीवन न तो व्यर्थ गया न कभी नीरस लगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नकान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साम्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशाकल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशकारे। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है इसके अंदर जो ये भी अध्याय चल रहा है कर्दम मुनि तथा देवभूति का परिणाम है। तो इसके अंदर मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुना रहे हैं। जैसे हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत के अंदर जो परीक्षित महाराज है वो प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। इसी प्रकार की एक कथा चलती है जिसमें सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं शौनक ऋषि, और यहाँ पर विदुर जी से मैत्रेय मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं, और मैत्रेय मुनि यहाँ पर उनको कर्दम मुनि और देवभूति के जीवन के बारे में वर्णन कर रहा है। तो बताते हैं कि जो मनु महाराज जो कि इस मन्वंतर के पहले व्यक्ति हैं मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, वो अपनी पुत्री देवभूति के विवाह को लेकर के बड़े चिंतित थे। और उन्होंने जब देखा कि उनको ब्रह्मा जी ने बताया कि कर्दम मुनि जैसे तपस्वी हैं वो आपकी पुत्री के लिए सही वर है। तो वो अपनी पुत्री को लेकर के वहां पहुंचते हैं और जाकर के वर्णन करते हैं कि ये प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन देवहूति, जो ये स्त्री है देवहूति माता, ये बहुत ही शीलवान है, बहुत ही सुंदर कांति है इनके शरीर की, और इनके पिता मनु महाराज जान जाते हैं कि इनके हृदय में ये कर्दम मुनि से बहुत प्रेम करती हैं, जिसके कारण वो उन्हीं को विवाह करना चाहती हैं। और इस प्रकार से कर्दम मुनि के पास में मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी पुत्री बहुत शीलवान है, प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद की बहन है, इसका मतलब एक अच्छे कुल की पुत्री है, और इससे आप विवाह कर लीजिए क्योंकि आप भी विवाह करना चाहते हैं और ब्रह्मा जी के अनुसार ये एकदम सही जोड़ी है दोनों आपस में। लेकिन कर्दम मुनि कहते हैं कि अगर मेरा एक पुत्र हो जाएगा उसके बाद मैं पुनः भक्ति योग में लौट जाऊंगा। तो इसका मतलब है यहां पर कि जो कर्दम मुनि थे वो पहले भी बहुत सालों तक तपस्या करते रहे और यहां पर भी वो कह रहे हैं कि जैसे ही अगर मैं ग्रस्त जीवन में जाता भी हूं तो अपने पुत्र परिजन को अपना सब कुछ सौंप करके वापस पुनः श्रवण कीर्तन स्मरण में वापस लौटाऊंगा। तो वो उस बात पर मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए, बाकी जैसी आपकी इच्छा रहेगी वैसे ही आपकी सेवा करें। पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति के अनुरूप रहे और जैसा पति की इच्छा हो वैसे ही चलना चाहिए, तभी जीवन सही ग्रस्त जीवन हो सकता है। पत्नी पति के अनुकूल चले, पति जो है वो गुरु के अनुकूल चले और गुरु कृष्ण के अनुकूल। तो इस प्रकार से जो ये जीवन है, इस जिसे कहते हैं व्यवहारिक ग्रस्त जीवन है। लेकिन जो मनु महाराज थे वो जब अपनी पुत्री को छोड़ करके जाते हैं तो उनको बहुत वियोग होता है और वो बहुत ही विलाप करने लगते हैं कि कैसे मैं छोड़ करके जाऊंगा। परंतु वो ये जान जाते हैं कि जो इनके पति हैं कर्दम मुनि, ये सदा किस में लगे रहते हैं, श्रवण चिंतन लेखन और कीर्तन में व्यस्त रहते हैं। एक ही चीज करते रहते हैं, क्या? श्रवण कीर्तन लेखन और चिंतन। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि तुरंत का तैयार भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है। तो प्रभुपाद एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि तुरंत का जो तैयार भोजन होता है वो स्वादिष्ट होता है और ताजा होता है। भगवद गीता में जैसे वर्णन है कि 3 घंटे से अधिक अगर भोजन रखा जाए तो खाने योग्य नहीं रहता। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है, कई बार हम लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी यात्रा में, मायापुर यात्रा में, तो 3 घंटे क्या, 30 घंटे पुराना भी मिलता है खाने, तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? लिखा है कि तुरंत का तैयार भोजन स्वादिष्ट होता है किंतु 4 घंटे बाद खाया जाए तो बासी और स्वादहीन हो जाता है। तो यहां पर समझने वाली बात है कि वो भोजन के बारे में लिखा है परंतु प्रसाद के बारे में नहीं लिखा। तो भक्त क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं, इसलिए प्रसाद जो होता है वो हमेशा ताजा रहता है। अगर वो 30 दिन पुराना भी रहेगा तो हो सकता है कि व्यवहारिक दृष्टि से खाने योग्य न रहे, लेकिन अगर किसी की श्रद्धा प्रसाद के प्रति है, अगर उसकी पदार्थ के प्रति श्रद्धा नहीं है कि एकदम बढ़िया बड़ा कोफ्ता होना चाहिए, गुलाब जामुन होना चाहिए, अगर उसकी पदार्थ बुद्धि नहीं है, प्रसाद बुद्धि है, तो फिर उसको 30 दिन पुराना भी प्रसाद खाने योग्य रहेगा और उसकी तबीयत भी खराब नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि कई भक्त खाया और उसका पेट खराब हो गया तो कहता है कल मैंने पुराना प्रसाद खा लिया था। वो क्यों खराब हुआ? क्योंकि उसकी श्रद्धा जितनी उस प्रसाद के प्रति है उतना ही अनुरूप में उसका जीवन स्वस्थ और ताजा रहता है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण को इसीलिए दे रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रसाद के प्रति किसी व्यक्ति की श्रद्धा रहती है, ऐसे ही श्रवण कीर्तन के प्रति किसी व्यक्ति की श्रद्धा रहेगी उतना ही उसके जीवन में क्या आएगा, चैंट एंड बी हैप्पी, हमेशा खुश रहेगा। लेकिन देखते हैं भक्त उदास दिखते हैं, जैसे ये भोजन के बारे में लिखा है स्वादहीन बासा, ऐसे दिखाई भक्तों ने जैसा दिखता है कि स्वादहीन हो गया है, बासा हो गया है। क्यों दिखता है? क्योंकि जैसे उसकी भोजन को ले रहा है उसी प्रकार से जप को भी वो एक प्रकार का औपचारिकता मान रहा है, श्रवण को भी वो मान रहा है कि नहीं अगर मैं नहीं गया तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं आए थे, इसलिए मुझे जाना चाहिए, बैठना चाहिए। वरना आप सोचिए कि इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद की कृपा से हर रोज श्रीमद भागवत कथा का पाठ होता है, इसका एक अक्षर भी सुन लेने से कहते हैं कई सौ गायों का दान देने का फल मिलता है। आधा अगर श्लोक भी सुन ले अगर ध्यान पूर्वक जीवन में, 1000 गाय दान देने का फल मिलता है, और पूरा एक श्लोक सुन ले तो कई सहस्त्र गाय दान देने का फल मिलता है, ऐसा श्रीमद् भागवत की महिमा में वर्णन आता है। तो आप सोचिए जरा कि अगर किसी व्यक्ति को यह मालूम होगा कि 1000 गाय दान देने का फल मिल जाएगा अगर मैं एक श्लोक सुन लूंगा, तो कितना ज्यादा जागरूक होगा इस बात के लिए कि मुझे श्रीमद् भागवत कक्षा में जाना ही चाहिए। लेकिन वो क्यों नहीं पहुंचता, तो वही प्रभुपाद जी ने शुरुआत ही इस तात्पर्य की है कि जिस प्रकार से भोजन के प्रति हमारी बुद्धि होती है कि ये बासा हो गया है, ये पुराना हो गया है, मेरे को अपनी पसंद का खाना है, ये मेरा शरीर खराब कर देगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये सब भोजन के लिए है, प्रसाद के लिए नहीं है। आप देखें अगर प्रसाद खाने बैठे तो भक्त को उतना प्रसाद लेना चाहिए जैसे आयुर्वेद में भी वर्णन किया गया है कि पेट के अंदर आधा भोजन और आधा उसमें जगह खाली रहनी चाहिए, जो आधा जगह खाली है उसमें से एक चौथाई में पानी होना चाहिए और उसकी एक चौथाई आधे भाग में क्या होना चाहिए, हवा के लिए जगह होनी चाहिए। तो मतलब अगर मुझे भूख लगी है 4 रोटी खाने की तो मुझे 2 रोटी खानी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर मैं प्रसाद को देखूंगा तो 2 रोटी प्रसाद से भी मैं शक्तिशाली रह सकता हूं। हम देखते हैं कि हमारे आचार्यों में, गोस्वामी में, सभी लोग कम भोजन पाकर के भी अपना जीवन अच्छा चलाते थे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, सीताराम लक्ष्मण पंचतत्व गौण धारण के श्री। तो हम देखते हैं कि 6 गोस्वामी हमारे वृंदावन के हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे दास गोस्वामी के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में वर्णन आता है कि 3 दिन में एक बार छाछ पीकर के भी अपना जीवन गुजारते हैं। तो हमको वैसे उनका इमिटेशन नहीं करना है, उनको जैसे देख करके जीवन नहीं, क्योंकि हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है भगवान के नाम में कथा में। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना डाइट चार्ट प्लान किया था कि अभी मैं 3 दिन में एक बार छाछ पीऊंगा फिर 3 दिन में, ऐसे डाइट चार्ट प्लान नहीं किया था। ना ही ध्रुव महाराज ने ऐसा प्लानिंग किया था कि मैं 3 दिन में जो है ना पत्ते खाऊंगा फिर 6 दिन में, ऐसा डाइट चार्ट प्लान नहीं किया था। ये इस तरह से होता है कि उनकी अनुराग इतना होता है भगवान की कथा में, भगवान के भजन में इतना आनंद है कि कभी कभी जब वो रुकता है तब उनको याद आता है कि अरे शरीर और आत्मा को जोड़े रखने के लिए कुछ तो डाल दो शरीर के अंदर, तो वो आधा ग्लास पानी डाल दिया, आधा ग्लास छाछ डाल दिया, थोड़ा सा प्रसाद। हमारा जीवन तो है ही प्रसाद पर निर्भर। प्रभुपाद जी बोलते थे एवरीबडी कैन डाइजेस्ट प्रसादम बट एवरीबडी कैन नॉट डाइजेस्ट द फिलोसफी। तो ये फिलॉसफी है, इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, परंतु प्रसाद सबसे डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में प्रसाद खिला करके भक्त बनाए और हम भी आज प्रसाद खिलाते हैं। लेकिन ये उनके लिए होता है जो नए लोग जुड़ते हैं, प्रसाद खाते हैं और कहते हैं वाह कितना अच्छी जगह है, स्वादिष्ट प्रसाद यहाँ मिलता है। लेकिन वो प्रसाद बोल रहे होते हैं लेकिन खाना भोजन खा रहे होते हैं। लेकिन जो एक भक्त बन जाता है, जब वो अनुभवशील होता है, वो जानता है कि ज्यादा खाऊंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कई लोग 15-15 साल 20 साल भजन करते हुए हुआ, लेकिन प्रसाद जो है वो 3 वक्त भी चाहिए होता है, कई बार 4 बार भी खाते हैं। सबका अपना अपना शरीर है, किसी भी शरीर की आवश्यकता है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि भोजन बासा हो सकता है लेकिन प्रसाद बासा नहीं होता है। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि स्वयंभू मनु का जीवन नीरस नहीं था, वृद्ध होने पर भी उसने प्रारंभिक जीवन की सी ताजगी थी, वह निरंतर कृष्ण भावना में बने रहे। तो जो यहाँ पर सम्राट स्वयंभू मनु है जिनकी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हो रहा है, तो कितने उत्तम कुल के ये मनु हैं। मनु महाराज जो है देखा जाए हर मनवंतर में मनु परिवर्तित होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बनाए जाते हैं और एक मनु 71 चतुर्युगों तक जाते हैं, और एक चतुर्युग जो है वो 43,20,000 वर्ष का होता है, मतलब 43,4 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना, एक हो गया 17,28,000 वर्ष, फिर हुआ 12,96,000 वर्ष, फिर हुआ 8,64,000 वर्ष, 4,32,000, 43,20,000 साल का एक चतुर्युग, इसे दिव्य युग भी बोलते हैं, इसके 71 बार परिवर्तित हो जाने पर एक मनु परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो एक मनु है जिनके बारे में कहा गया है कि उनकी आयु 71 चतुर्युग थी, 71 चतुर्युग तक कैसे बने रहे ताजा, जैसे प्रसाद बनने के बाद में हमेशा कैसा बना रहता है ताजा, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में व्यक्ति बहुत ही जागरूक है, नए नए भक्त आते हैं उत्साही हरि बोल, लेकिन 5 साल 10 साल जैसे जैसे समय बीतता है फिर वो धीरे धीरे अपने आप को एकांतिक भजन की ओर ले जाते हैं कि चुप रहेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, अकेले रहना अच्छा लगता है, शास्त्र घर में पढ़ लेंगे, लोगों के साथ में बैठेंगे, भजन करने में ज्यादा रुचि नहीं है ना, कीर्तन में डांस नहीं होता है, अधिकतर भक्तों को शारीरिक दर्द रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, उत्साह बना रहना चाहिए, और उत्साह बना रहने का कारण है यहाँ पर लिखा है, ध्यान करते थे किसका, विष्णु का, कुर्वतः ब्रुवतः कथा, और सदा भगवान की कथाओं को बोला करते थे। तो ताजा रहने की यहाँ पर क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है कि एक व्यक्ति 70 साल नहीं, श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में एकदम तरोताजा थे और पूरे विश्व को परिवर्तित किए, लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है 71 युग में भी तरोताजा बने रहे। इसका कारण था कि उनका श्रवण कीर्तन और कथन हमेशा चलता है। एक भक्त मेरे को मिले थे, वो कहते हैं बहुत साल हो गए प्रभु जी प्रचार करते हुए, लेकिन हम देखते हैं प्रचार करते हैं नए नए लोग जुड़ते हैं, पहले एक कक्षा में एक कार्यक्रम में 100-200 भक्त आते हैं, धीरे धीरे पता नहीं क्या रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है, भक्ति में प्रॉब्लम होता है कि भक्त आना छोड़ देते हैं क्लास के अंदर। अभी तो ऐसा लगता है हमको वैराग्य ले संन्यास ले लेना चाहिए। मैंने कहा संन्यास मतलब, खैर मतलब प्रचार से संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि हमारा प्रचार इफेक्टिव नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे कि कोई ना भी हो तब भी दीवारों को प्रचार करना चाहिए, मतलब कोई ना भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 लोग हैं, 1 लोग है या कोई है या नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, कुर्वतः ब्रुवतः कथा, हमेशा भगवान की कथा बोलते रहना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं जारे देखे तारे कहे कृष्णा उपदेश हमारा आज्ञा ए गुरु ए तार ए देश, हमारी आज्ञा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हर व्यक्ति को गुरु बनना है, गुरु बनने का मतलब वो नहीं व्यास आसन पर बैठना है या फिर संन्यास का डंडा होना चाहिए, गुरु बनने का मतलब है हर व्यक्ति को कृष्ण शिक्षा देना। तो कृष्ण शिक्षा देना हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है, उसके लिए जरूरी नहीं है कोई हाउस प्रोग्राम में इनवाइट करे या ना करे, हमें कोई कार्यक्रम में बुलाए ना बुलाए, अगर हम चाहें रोड पर जाकर भी प्रचार कर सकते हैं। जैसे देखते हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के समय लोग गीता देते हैं ले लीजिए, जबरदस्ती कहते हैं ले लीजिए ये ले लीजिए, और फिर व्यक्ति नहीं लेता है तो कार में फेंक देते हैं, लेना ही पड़ेगा। लेकिन तरीका क्या है कि भगवान की कथा बोलनी चाहिए और उस व्यक्ति को प्रेम पूर्वक भगवद गीता देना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद भी कहते थे गीता खाली दो मत, गीता पढ़ो और पढ़कर की कथा करो, कथा करके अगर आपने उस व्यक्ति का दिल जीत लिया तो एक भगवद गीता नहीं, हो सकता है एक कार्टन भगवद गीता ले, लेकिन आपको क्या करना है कुर्वतः ब्रुवतः कथा, भगवान की कथा जरूर करना चाहिए। और इससे हमेशा कैसे रहेंगे तरोताजा। सुबह 8 बजे भागवतम क्लास शुरू होती है, 9 बजे समाप्त होती है, 9 बजे के बाद व्यक्ति सोचता है थोड़ा आराम करना चाहिए, सुबह 4 बजे से जगा हुआ थक जाता है व्यक्ति, लेकिन भौतिक संसार का व्यक्ति थकता है, आध्यात्मिक संसार का व्यक्ति तरोताजा रहता है। क्यों, क्योंकि उसने भगवान का नाम किया है। जप करने से थक जाए कोई व्यक्ति तो सही मायने में उसने जप ही नहीं किया। कई लोग बोलते 2 घंटे जप कर लिया, 1 घंटा कथा सुन लिया, मंगला आरती से जागा हूं अब तो थोड़ा, तो उसने क्या किया, साधना किया, भोग की तरह से उसने बस औपचारिकता में आया, समय काटा और घर चला गया। अगर कोई व्यक्ति सही मायने में जप कर रहा होगा तो कैसा हो जाएगा, 9 बजे तो ऐसे भर जाएगा, शक्ति का संचार होगा, कहेगा भेजिए मुझे कहां जाना है सेवा के लिए। प्रसाद पाने के टाइम में आदमी सोने का प्लान बना रहा होता है, 2 घंटे सो जाता है। तो आप देखिए मनु महाराज जो है उन्होंने बहुत ध्यान पूर्वक कथा श्रवण किया और कथा को बोला। श्रील प्रभुपाद कहते थे आप कथा को बोल भी तभी पाएंगे जब आप सही से कथा को सुन पाएंगे। जब श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य बने तो प्रभुपाद जिस प्रकार से शरणागत थे अपने गुरु के प्रति, ऐसे अगर कोई गुरु के प्रति शरणागत हो तो सही मायने में उसका जीवन तरोताजा रहेगा, जैसे प्रसाद हमेशा तरोताजा रहता है। प्रभुपाद जी इलाहाबाद में प्रयाग फार्मेसी नाम की कंपनी चलाते थे और उसकी दवाइयां लेकर के आते थे दिल्ली, उनको जाकर के सेल करते थे और उनसे फिर पैसा लेकर वापस जाते थे। प्रभुपाद जी एक बार जो अपने प्रयाग फार्मेसी में जब कार्य करते थे तो विदेश लोगों ने सोचा कि क्यों ना अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत जब नहीं थे, जब वो अभय चरण डे थे, कि क्यों ना इन व्यक्ति को अपनी जो एक कंपनी है ब्रिटिश कंपनी उसका ऑल इंडिया स्टॉकिस्ट बना दिया जाए। बिजनेसमैन के लिए क्या है, सबसे बढ़िया बिजनेस ग्रो कर जाए, भक्त के लिए भक्ति ग्रो कर जाए, है ना, भौतिकवादी के लिए भौतिक भोग और विलास इंक्रीज होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद चाहते थे क्या इंक्रीज हो, बिजनेस इंक्रीज हो, बिजनेसमैन है। अभी उनको मीटिंग के लिए 3 बजे या 2 बजे के समय था और वो लोग बैठ गए एक मीटिंग में जिसमें उनके जान पहचान के लोग भी थे जिन्होंने रिकमेंड किया अभय चरण जो है ये सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं ऑल इंडिया स्टॉकिस्ट बना सकते हैं अपनी विदेशी दवाइयों के लिए। और उनके लिए बहुत अनुकूल भी था कि अगर वो स्टॉकिस्ट बन जाते हैं तो उनको जो मैन्युफैक्चरिंग का मेहनत है वो बच जाएगी और समय भक्ति के लिए मिलेगा। रूपा जी ने एग्री किया। मीटिंग शुरू हुई 2 बजे, मीटिंग शुरू होते होते 6:30 बज गए। अभी जब 6:30 बज गए तो वो बोलते हैं कि चलिए बहुत देर हो गई है यहाँ पर मीटिंग करते करते, अभी अपनी मीटिंग को दूसरे स्थान पर करेंगे। मतलब आप देखिए एक व्यक्ति मीटिंग से भी थक गया, मीटिंग से थक गया। तो हम भक्त जो है वो अगर थक रहे हैं इसका मतलब वो कार्य मेरे मस्तिष्क के अनुकूल नहीं हो रहा है, मैं उसके विपरीत जोर लगा रहा हूं इसलिए वो मेहनत करने से मैं थक गया। अगर मैं अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य कर रहा हूं तो मैं थकूंगा थोड़ी, मुझे आनंद आएगा। जिस व्यक्ति को जिस चीज में आनंद आता है, जैसे फिल्मी कलाकारों को अगर फिल्म बनाने में आनंद आता है तो वो 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे उसी चीज में लगे रहते हैं और वो थकते नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, दुकानदार है, वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम कर सकता है क्योंकि उसको लगता है अरे ये मेरे जीवन के अनुकूल है। लेकिन भक्त अगर भक्ति से थक रहा है तो उसके जीवन के अनुकूल नहीं है। उसको कार्य करना चाहिए कि मैं ओरिजिनली हूं कौन, जीवेरे स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, और मैं भगवान की दासत्व सेवा करने में थक रहा हूं तो अभी मैं शारीरिक रूप में जीवन जी रहा हूं, आत्मिक रूप में जीवन नहीं जी रहा। तो प्रभुपाद ने बोल दिया, श्रील प्रभुपाद कहते हैं नहीं नहीं मैं क्लब नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों, तो दूसरे व्यक्ति कहते हैं ये वैष्णव है ना, कंठी धारण किए हैं इसके कारण ये नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आप यहीं पर मीटिंग कर लीजिए, मुझे आगे किसी और काम के लिए जाना, जल्दी खत्म करिए, आने जाने में समय खराब। उन्होंने कहा अभी तो हमारी मीटिंग 3 घंटा और चलेगी। तो अभय चरण डे कहते हैं कि नहीं मैं अब मीटिंग और नहीं कर सकता हूं क्योंकि अब समय हो गया है, कहां जाने का, मंदिर जाने का। संध्या आरती का नियम श्रील प्रभुपाद जी ने फिक्स किया था, सुबह घर में आरती, शाम को अपने मठ में जाकर के गौड़ीय मठ में आरती करते थे। कहा मुझे संध्या आरती के लिए जाना है, शाम का प्रवचन होता है वो सुनना है। श्रवण के प्रति कीर्तन के प्रति इतनी जागरूकता, एक बिजनेसमैन, कोई व्यक्ति वो फुल टाइम डिवोटी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, सन्यासी नहीं है, वो व्यक्ति क्या है भगवान की कथा कीर्तन में तरोताजा हो जाते हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद में कीर्तन और कथा आनंद देती है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा हर मंदिर में गीता कथा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं आजकल इस्कॉन मंदिर में भी भागवत कथा में ही इतने कम लोग आते हैं और गीता कथा तो कई जगह होना ही बंद हो गया है क्योंकि उनको लगता है ये एक स्पेशल अलग से मेहनत है, इसको हम अपना स्वभाव नहीं मान पा रहे हैं, आनंद नहीं ले पा रहे हैं उस कथा के अंदर। लोगों को साधना चार्ट भरना होता है, 1 घंटा श्रवण 1 घंटा अध्ययन, 15 मिनट अध्ययन और 10 मिनट वीडियो, आजकल आते हैं ना यूट्यूब वीडियो, 10 मिनट वीडियो श्रवण, वो सिर्फ जीवन परिवर्तित नहीं होगा जब तक हम सामने बैठकर के भक्तों की कथाओं को श्रवण नहीं करेंगे, प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, जिज्ञासाओं को शांत नहीं करेंगे, प्रगति होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद वहां से उठते हैं और कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, बट इससे ज्यादा एक महत्वपूर्ण कार्य मेरा है, मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला कहाँ जाना है? कहा मुझे अपने मठ में जाना है आरती के लिए, श्रवण कीर्तन के लिए। तो जब उठ करके वो चले गए, उन्होंने कहा लेकिन अगर आप ऐसे जाएंगे तो फिर आपको स्टॉकिंग एजेंसी नहीं मिलेगी। कहा कोई बात नहीं है, मुझे वो एजेंसी चाहिए। कौन सी? गोलोक धाम की एजेंसी। और उस एजेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा? दृढ़ता लानी पड़ेगी। तो जब वो चले गए तो लोग बोलते हो ये हमारे लिए अच्छे व्यक्ति नहीं है, इनको हम नहीं दे सकते अपना बिजनेस। बिजनेस तो गया लेकिन उनको क्या मिला? कृष्ण भावनावित प्रेम प्राप्त हुआ दृढ़ता के कारण। लेकिन अगर मुझे ऐसा पता चले कि मेरा 1,00,000 का फायदा होने वाला है, 7 बजे मेरा आरती का टाइम है, तो हम क्या चूज करेंगे? हम खुद जानते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। हम कहेंगे अरे कथा तो रोज होती है मंदिर में, लबालब कथा मिल रही है, सुबह भी मिलती है शाम को मिलती है, आजकल तो इंटरनेट पे भी कथा है, कहाँ जाएं कथा के लिए? इतना जरूरी क्या है मंदिर जाना दर्शन करने? अरे भगवान तो हर जगह है, कण कण में भगवान विराजमान है, मंदिर जाने की आवश्यकता? मन इस प्रकार से विपरीत चीजें पैदा कर देता है और हम जाना ही नहीं चाहते मंदिर की ओर। बहुत स्पेशल मैसेज भेजे जाते हैं, टुडे स्पेशल प्रोग्राम महाराज इज कमिंग, तब जाकर के भक्त अपने घर से तैयार होकर पैर बाहर निकालते हैं मंदिर जाने के लिए। आप सोचिए ये स्थिति है, तो सोचिए हम कैसे 71 युगों तक तरोताजा रह सकते हैं। 71 युग की क्या बात है, 71 साल भी तरोताजा नहीं रह पाएंगे। 71 साल क्या, आजकल तो देखते 30-35 साल 40 साल पे भी भक्त बोलते हैं अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। क्यों बूढ़ा हो गया है? प्रभुपाद जी के पास भक्त जाकर बोलते थे प्रभुपाद अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत साल हो गए 10 साल, अब मैं चाहता हूं वृंदावन जाकर मैं भजन करूं, कुटिया बनाकर श्रवण कीर्तन करूं, वहीं रहूं। तो प्रभुपाद जी कहते थे यस यू कैन गो, लेकिन मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ। कितने साल उम्र थी? 75 साल। बोले मुझे तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, वृद्ध हो जाऊंगा, जब कृष्ण की सेवा करने योग्य नहीं रहूंगा, तब वृंदावन चला जाऊंगा। लेकिन 70 साल पर मैं वृंदावन छोड़कर के आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है सेवा आनंद जो है ये प्रेम आनंद से भी ऊपर का आनंद है, सेवा करना भगवान की, और भगवान की उत्तम सेवा है भगवान का श्रवण और कीर्तन करना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से तो आप सोचिए प्रभुपाद जी मीटिंग को अपने को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद एक बार अलाहाबाद से दिल्ली की ओर आ रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है उनको, कहता है कि स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जब कर रहे थे कंठी माला पहने हुए थे, तो संसार के लोगों के लिए तो अगर कोई धोती कुर्ता पहनता है तो पता नहीं कितना बड़ा वैरागी हो जाता है ना। तो बोल रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं? कहा दिल्ली जा रहा है। अच्छा ठीक है। और कुछ ही देर बाद जब वो देखते हैं, कहा दिल्ली मैं भी जाऊंगा, दोनों साथ में जाएंगे। सुबह उठ करके देखते हैं तो प्रभुपाद 4 बजे के करीब रात्रि ट्रेन में बैठे थे, अभी दिल्ली नहीं आया था, मथुरा स्टेशन आया है। और मथुरा में वो बोर्ड लगा हुआ देखते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज की व्रज धाम परिक्रमा, और वो वहीं पर उतरने का प्लान कर लेते हैं। व्रज धाम परिक्रमा पे गुरु महाराज मेरे हैं और मुझे क्या करना है, यहाँ पर उतर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु के प्रति उनकी शरणागति थी, जबकि इतना इजीली अवेलेबल नहीं था जैसे अभी आजकल इंटरनेट की कृपा से गुरु का दर्शन हमको फोटोज और वीडियोज और लाइव से मालूम होता है। परंतु पहले गुरु से पत्र लिखकर व्यवहार करना होता था, प्रश्न पूछने होते थे, और जाकर के उनका कथा श्रवण करने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए मालूम नहीं होता था वो किधर ट्रेवल कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ जाकर के हम सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी उस दर से निकल रहे थे और उन्होंने देखा कि परिक्रमा लिखी हुई है, गुरु का दर्शन करने का मौका है, बिजनेस को छोड़ दिया और फिर कहाँ चले गए उतर के, मथुरा में। तो वो व्यक्ति उठा, और क्योंकि तो जल्दी उठ गए थे, वो लेट उठा और वो अभी चाय पीने के भाव में था, लेकिन ये देखता है कि ये उतर रहे हैं अपना सामान लेके, तो पूछता है कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मेरे गुरु महाराज की परिक्रमा चल रही है, मैं गुरु के प्रति शरणागत हूँ, तो मुझे गुरु से मिलने जाने का मौका मिला। आ गया मेरा स्टेशन मथुरा, यहाँ पर मेरे भगवान ने जन्म लिया था। वही बोलता, लेकिन आपको तो दिल्ली बिजनेस के लिए जाना था। कहा, जब बड़ा बिजनेस मिल जाए हायर पर्पस, तो लोअर पर्पस चला जाता है। हायर पर्पस है इस समय गुरु और कृष्ण से मिलने का मौका। छोड़ दिया बिजनेस, व्यक्ति अचंभित रह गया देखकर कि एक व्यक्ति दो बार, एक बार पहले भी त्याग दिया, एक बार फिर से त्याग दिया अपना बिजनेस। इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज से जब प्रभुपाद मिलते हैं और पूछते तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, कह रहे ठीक नहीं चल रहा, तो प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ठीक चलेगा भी कैसे, क्योंकि तुमने स्वतः ही राधा और कृष्ण के चरणों में अनुराग पैदा किया। और जिस व्यक्ति का चरणों में अनुराग हो जाएगा वो व्यक्ति पैसे के प्रति क्यों आसक्त होगा, पैसा तो हवा में उड़ रहा है, जाओ तो वैसे पकड़ लो पैसे को, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम लगाते ही हो कहा, कृष्ण चरणों में। वैसा आत्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदना, बहुशा का अनंताशय बुद्धि है अवसाई नाम। जो व्यवसायी व्यक्ति है जिसका मन सदा राधा कृष्ण में रहता है, वो व्यक्ति एकाग्रचित रहता है कि जैसे भी करके वो कार्य करो जिससे मेरी भक्ति प्रगति करे, अनुकूल भक्ति को आगे बढ़ाना है, प्रतिकूल चीजों को त्यागना है, वर्जनम। तो उतरे वहां चले गए और वहां जाकर के देखते हैं, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं गुरु के पास में, कथा हो रही है 6 घंटे कथा चल रही है, कोई छोटी मोटी है नहीं, 3 घंटे 1 घंटा 40 मिनट्स 6 आवर्स कथा चल रही है, और ध्यान पूर्वक बैठ करके कथा को सुन रहे हैं। और उसी उन्हीं के जो शिष्य हैं जो उनके साथ रहते हैं गुरु के, संन्यास भी लिए ब्रह्मचारी भी हैं, वो कहते हैं चलो वृंदावन का क्या करके आते हैं, दर्शन करके आते हैं। वृंदावन के अनेक विग्रहों के, गोस्वामी मंदिरों के विग्रहों के दर्शन करने जाते हैं, लौटते हैं तो भक्ति सिद्धांत महाराज पूछते हैं आप कहाँ गए थे, कहा हम गए थे दर्शन करने के लिए, कहा यहाँ आपके गुरु कथा कर रहे हैं और आप दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन होते हैं कहाँ से, कानों से, लेकिन आंखों से क्या होती है, कसरत होती है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कसरत होती है। भगवान का दर्शन सही मायने में तभी हो पाएगा जब हमने भर भर कर कथा को श्रवण किया होगा, रोज रोज कथा को श्रवण किया होगा। हम कहते हैं एक घंटा नहीं, उस व्यक्ति को जितना समय अपने कार्य के अलावा मिले उसको कथा श्रवण या अध्ययन करना ही चाहिए, और कोई तरीका ही नहीं है माया से बचने का। अगर वो व्यक्ति सोचता है मेरा साधना पूरा हो गया, 1 घंटा मैंने श्रवण कर लिया या आधा घंटा श्रवण कर लिया, उससे वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि माया 24 घंटे सतर्क है भगवान की सेवा में। वो बहुत ही बड़ी वैष्णवी है माया देवी, वो तैयार है भगवान की सेवा में फायर करने के लिए, सबको शूट आउट निकला हुआ है ना, होता शूट आउट एट क्या पिक्चर आती, गाजियाबाद लोखंड वाला ऐसे पिक्चर आती, शूट आउट निकला हुआ है कि बस मारना है आज इनको, और हम जो है वो ढीले पड़े हुए हैं, सोचते आधा घंटा गोली चला लेंगे या फिर जपा कर लेंगे या फिर मॉर्निंग साधना में कर लिया फिर पूरा दिन मैं इंजॉय कर सकता हूँ, तो बस ये जो इंजॉइंग मेंटेलिटी है आनंद लेने की ये पकड़ लेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं इसलिए अच्छा प्रवचन दे सकता हूं क्योंकि मैंने अपने गुरु को ध्यान पूर्वक सुना है 6 घंटे। लोग बोलते थे आपकी समझ में आता है, इतनी हाई फिलॉसफी बोलते थे भक्ति सिद्धांत महाराज, उनकी लिखी हुई पुस्तकें आज भी भक्तों की समझ में नहीं आती है, इतनी हाई फिलॉसफी है गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी। लेकिन वो बोलते थे प्रभुपाद समझ आए ना आए लेकिन मेरा हृदय क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आप देखिए इस प्रकार से अगर कोई जब साधना कर सके ध्यान पूर्वक तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, तरोताजा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद तरोताजा हैं, और उनके बारे में जितने भी संत हैं वृंदावन के हो या जितनी भी सोसाइटीज हैं, आप देखेंगे अधिकतर लोग इस्कॉन को चाहे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताएं ना बताएं, लेकिन श्रील प्रभुपाद एज अ पर्सनैलिटी को बहुत ग्लोरिफिकेशन मिलता है दूसरी सोसाइटीज से भी। वृंदावन में भी बहुत सारे लोग श्रील प्रभुपाद जी को बहुत सम्मान करते हैं। जब प्रभुपाद जी ने वृंदावन की जमीन खरीदी थी तो उस समय भक्त कहते थे प्रभुपाद वृंदावन शुरू होता है लोई बाजार राधा दामोदर मंदिर राधा रमण मंदिर से, वो वृंदावन है। अब इतनी दूर जमीन खरीदेंगे तो कैसे भक्त आया करेंगे इतनी दूर, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भी राधा दामोदर में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, जहां कृष्ण का कीर्तन होगा वहां ऑटोमेटिकली सब लोग आने लग जाएंगे। और आज देखते हैं वृंदावन का शुरुआत ही होती है इस्कॉन मंदिर से। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का विजन है। वो जानते हैं कि जहां कथा कीर्तन होगा वहां सब कुछ तरोताजा होगा। आज भी कोई नया व्यक्ति वृंदावन आएगा तो इस्कॉन वृंदावन को देखने के बाद में एकदम कहेगा हाँ यही वृंदावन है। लेकिन जबकि वृंदावन वहां से शुरू नहीं होता था, वो छठी करार मार्ग था। वृंदावन शुरू होता था राधा दामोदर मंदिर, इसलिए सभी मंदिर आसपास वहां पे। तो इस प्रकार का भाव क्यों है? क्योंकि उनकी अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है और उनका जप कीर्तन कथन बहुत स्ट्रांग है। प्रभुपाद जी ये नहीं सोचते थे किसको प्रचार करना है किसको नहीं करना है। हम लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं, ये भक्त बनने योग नहीं है, इसको नहीं बोलूंगा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गांव का है, ये पैसे वाला है, अरे इसको बोलूंगा नाराज हो गया तो कल को डोनेशन नहीं देगा, ऐसा भाव भी तो आ सकता है। लेकिन सादा हृदय व्यक्ति ज्यादा षड्यंत्र नहीं रचता। वो कहता है बस मुझे भगवान की कथा कहनी है, उसके हृदय में भी भगवान है, मेरे हृदय में भी भगवान है, भगवान चाहेंगे तो इससे सेवा लेना तो सेवा देना। कुर्वताओं ध्रुवतः कथा, हमेशा भगवान की कथा को बोलना चाहिए। और इसी के कारण मनु महाराज की जो पुत्री है देवहूति, उनके अंदर भर भर के भक्ति भावना है। जो अपने पति कर्दम होने के साथ विवाह करती हैं और विवाह करने के बाद में वो जब उनको त्याग कर जाने को तैयार हैं तब भी वो मार्ग नहीं रोक रही है अपने पति का कि मत जाओ। तो कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र कपिल को छोड़ दिया है कि बस अब अपना पुत्र तुम्हारा ख्याल रखेगा। जैसे स्त्री के लिए बताया गया है कि शुरुआत में उसको पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, बड़े होने पर युवा होने पर पति के संरक्षण में होना चाहिए और वृद्ध होने पर पुत्र के संरक्षण में होना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं तात्पर्यों में कि हो सकता है कि संरक्षण करने के लिए पुत्र ना हो, कोई ना हो, लेकिन अगर वो स्त्री भक्त है, मान लो पुत्री है, पुत्र ना हो तो कौन संरक्षण प्रदान करेगा? तो सबको संरक्षण प्रदान करने वाले कौन है? कृष्ण। द्रौपदी जब थी, उनका चीरहरण जब दुशासन ने किया ऐसी अवस्था में, तो उनकी रक्षा किसने करी ना? जब वो कहती हैं मेरे पांच पति हैं जो मेरे को रक्षा कर लेंगे, क्या वो रक्षा कर पाए? उन्होंने सबने अपनी गर्दन नीचे कर ली। विष्णु पितामह धृतराष्ट्र, किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी मदद खुद करूंगी और अपने वस्त्रों को पकड़ लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब तो मेरे बस का कुछ रहा ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और क्या पुकारा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हुआ, भगवान ने साड़ी की फैक्ट्री खोल दी। साड़ी की फैक्ट्री खोल दी, भगवान ने कहा कि अरे पहले पुकारा क्यों नहीं, मैं तो बाहर ही खड़ा था जहां पर ये खेला जा रहा था खेल, मैं तो उसके बाहर ही खड़ा था, बस जरूरत है एक बार हृदय से उनको पुकारने की। लेकिन हम अहंकार वश होकर के सोचते हैं कर्ता अहम, अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार भी व्यक्ति को लगता है करने वाला तो मैं हूं और इसी के कारण वो भगवान को शरणागत नहीं हो सकता। ईशा वश्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है वो भगवान के कारण ही है। आज मैं बोल रहा हूं तो ये शक्ति किसकी है? भगवान की है। लेकिन मैं उन भगवान के लिए सेवा करने के लिए शरीर मिला है, उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए ना करो तो एक दिन जो मुझे मनुष्य शरीर में सुविधाएं मिली है वो एक दिन छीन ली जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति सीईओ है कंपनी का और एक व्यक्ति गार्ड है कंपनी का। गार्ड की तनख्वाह कितनी होती है? 12,000-13,000। वो गार्ड साइकिल पर आता है और अपनी ड्यूटी करता है और चला जाता है। जो सीईओ होता है कंपनी का, बॉस जो होता है ओनर के बाद मालिक के बाद, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको दिया जाता है फ्लाइट टिकट्स, उसको दिया जाता है बहुत बड़ा बंगला फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द कंपनी साइड, भगवान कंपनी की साइड से दिया जा रहा है उसको, आने जाने का ट्रेवलिंग अलाउंस, कार, ड्राइवर, लैपटॉप, सब कुछ दिया जा रहा है। उसका कारण क्या है? कंपनी चाहती है कि ये ज्यादा सेवा करे कंपनी की, है कि नहीं? लेकिन गार्ड को तो फैसिलिटी नहीं दी। ऐसे ही 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनियों में फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ 4 लाख योनि है मनुष्य योनि जिसमें फैसिलिटी दी गई है, ज्यादा फैसिलिटी। अगर आपकी नाक पे मक्खी बैठे तो क्या करेंगे? बैठे रहने देंगे? उड़ाएंगे उसे? हाँ, उड़ा दो। लेकिन अगर मान लीजिए शेर है जो जब निकलता है तो पूरा जंगल हैरान हो जाता है कि शेर निकल गया, भागो। तो एक चिड़िया होती है जो शेर की पीठ पर बैठ करके आवाज निकालती है, ची ची ची, और उस आवाज से क्या होता है, सारे जानवरों को बताती है शेर निकला है शिकार करने के लिए, छुप जाओ। सारे जानवर भाग। और ये शेर जानता है, ये हर बार यही काम करती है जब मैं शिकार करने निकलता हूं, यही है वो। लेकिन क्या वो उठा सकता है इसे? फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। सबसे शक्तिशाली जानवर होने के बाद भी वो तीनों गुणों के अंदर फंसा हुआ है, उस योनि में फंसा हुआ है। वो यहां पर बैठी मक्खी को उड़ा नहीं सकता, लेकिन मेरी पीठ में अगर मक्खी बैठी हो तो मैं उड़ा सकता हूं। ये फैसिलिटी तो क्यों मिली है फैसिलिटी? क्या खाने पीने भोग करने के लिए कि प्रसाद खाऊंगा फिर घर जाकर सो जाऊंगा? किस लिए मिली है? सेवा। लेकिन भगवान देखते हैं कि ये सेवा नहीं कर रहा। अगर वो सीईओ बंगला गाड़ी लेने के बाद भी गार्ड की तरह 8 घंटे देखे, 8 घंटे हो गया मैं चलता हूं, तो एक दिन क्या करेगी कंपनी? उस सीईओ से उसकी गाड़ी बंगला छीन लेगी। वैसे ही भगवान क्या करते हैं, देखते हैं कि इसने मनुष्य शरीर पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। जान बुझ कर विष खा रहा है, तेरा मनुष्य शरीर में ले लूंगा, अब क्या दूंगा तुझको? पशु का शरीर वापिस, पुनः मुशु कहा भवा, दोबारा से चूहा बन जा। सुना आपने कथा को? दोबारा चूहा बन जा। चूहा था, गुरु के पास आया, कहा गुरु जी शक्ति दीजिए, मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है। गुरु ने शक्ति दी, बिल्ली बना दिया, कहा तुम्हारे पीछे बिल्ली पड़ी, तुम बिल्ली बन जाओ। बिल्ली बना दिया, थोड़ी देर बाद आया, कहा मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है, कुत्ता बना दिया, कहा कुत्ते नहीं तुम्हें परेशान करे। कुत्ता बना दिया, बोला मेरे पीछे शेर पड़ा है, कहा ठीक है मैं तुम्हें शेर बना देता। शेर बनाया तो कहता है गुरु जी भूख लगी है तुमको खाऊंगा। जिसने शक्ति दी उसी को। आज भगवान ने मनुष्य भी बनाया, वही लोग बोलते हैं देयर इज नो गॉड, भगवान नहीं है। और लोगों की तो छोड़ दो, हम लोग जो भक्ति में हैं, हम लोग भगवान के नाम जप को इतना सरल समझते हैं, कथा को ऐसे बोलते हैं, मतलब वेरी सिंपल। कौन बोलने आ रहे हैं आज लेक्चर? कौन कथा करेंगे आज? अच्छा अच्छा ये वाले महाराज, फिर चलते हैं। अच्छा ये वाले प्रभु जी को तो आता ही नहीं बोलना, अरे इनकी तो लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है। अरे बोल तो कथा रहे, कृष्ण कथा तो बोल रहे, श्लोक तो अनुवाद तो सुनेंगे, प्रभुपाद का तात्पर्य तो सुनेंगे। कथा के प्रति रुचि, वासुदेवम कथा रुचि, ये जब हो जाए व्यक्ति का जीवन आनंद भर जाएगा, तरोताजा हो जाएगा। गुरु को खाने आया तो गुरु ने क्या कहा? पुनः मूषिका भवा, दोबारा से चूहे बन जाओ। यही भगवान भी करता है। हम देखते हैं भक्ति में जब आते हैं बहुत आनंद होता है, तरोताजा एहसास करते हैं। 10 साल तक भर भर के अपराध करते हैं कथा के प्रति, नाम के प्रति, सेवा के प्रति, धाम के प्रति, वैष्णवों के प्रति, और क्या करते हैं फिर आनंद नीचे चला। और लोग बोलते हैं 15 साल हो गए अब मैं सब समझ गया हूं मंदिरों में क्या चलता है, अब मैं नहीं आऊंगा मंदिर। और मुझे बहुत लोग मिलते छोड़कर चले जाते हैं। उसका जाने का कारण है कि उन्होंने कभी भी ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन किया नहीं। अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक ध्यायतो, यहां लिखा है ध्यायतो विष्णु, अगर वो ध्यान पूर्वक भगवान का श्रवण कीर्तन करता होता उसके उत्साह में कभी कमी आ ही नहीं सकती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तात्पर्य में अपने लेक्चर में बोल रहे हैं प्रभुपाद कि अगर कोई व्यक्ति उत्साहहीन हो गया है, उत्साह नहीं है, निश्चय नहीं है, धैर्यता नहीं है, इसका मतलब उसने ये नहीं कि प्रोसेस गलत है, भागवतम गलत है, भक्त गलत है, नाम जप गलत है। और प्रभुपाद क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप बताइए क्या गलत है, हम या फिर ये मार्ग गलत है? बताइए कौन गलत है, मार्ग गलत है कि हम गलत है? हम गलत है। तो जिस दिन हम सही मार्ग में चलेंगे तो हम समझ पाएंगे। देखिए अर्जुन जो थे उनको अपने गांडीव का घमंड हो गया था कि मैं तीर चलाता हूं तो सामने वाला व्यक्ति मरता है, मैं योद्धा हूं शक्तिशाली। तो जब वो चले गए, समाप्त हो गया महाभारत का युद्ध, तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा था कि 16108 रानियां जो है मेरी द्वारका की, उनको कहां ले जाना? इंद्रप्रस्थ ले जाना, बाद में वृंदावन में उनको कथा श्रवण कराना उद्धव जी से। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा तुम शक्तिशाली योद्धा हो, जाओ सभी रानियों को ले आओ। कहां से? द्वारका से। जब वो लेने गए तो रस्ते में भील मिल गए, और भीलों ने क्या किया, सभी रानियों को लूट लिया, छीन कर ले गए, स्त्री की रक्षा तक नहीं कर पाया गांडीव, और कहा 16 अक्षौणी सेना के विरुद्ध खड़ा हो गया था गांडीव लेकर के अर्जुन। तो भगवान ने कहा बहुत घमंड है, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं पार्थ सारथी था तो इसलिए सब कुछ हो रहा था। भगवान ने ऐसा नहीं चलाया, और साथ में वो उनको भील लेकर के कैसे चला गया। तो इस कथा का वर्णन श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में कहते हैं, वहां कथा आती है कि 21 प्रकार से उठा करके ले गए थे जो ये कितनी भी रानियां थी, उनको भील कैसे चुरा कर, क्योंकि सभी रानियां कौन थी, लक्ष्मी स्वरूपा थी। अभी लक्ष्मी कोई भौतिकवादी व्यक्ति छू देगा तो वो क्या खड़ी रहेगी, किडनैप हो जाएंगी और डिसअपीयर हो जाएगी। जिस प्रकार से रावण जब सीता मैया को उठा के ले गया था तो सीता जी को तो स्पर्श भी नहीं कर सकता था, वो तो छाया सीता को लेके गया, सीता महारानी तो अग्नि के अंदर प्रवेश कर गई थी और अग्नि से छाया सीता जो थी उनको रावण लेके। तो जो जो व्यक्ति दुष्ट होता है वो सीता महारानी जैसी लक्ष्मी को कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो यहां पर कैसे भील ने लूट लिया, विष्णु पुराण में आता है भगवान स्वयं ही भील बनकर के आए और उन्होंने अपनी ही रानियों को लूट लिया। क्यों लूटा उसका वर्णन भी आता है कि जितनी भी अप्सराएं थी, जितनी भी ये सारी रानियां थी, एक बार ये सभी अप्सरा के रूप में सेवा कर रही थी और अष्टावक्र मुनि की इन्होंने सेवा करी। अष्टावक्र वो है जो 8 जगह से टेढ़े हैं, अष्टावक्र मुनि की सेवा करी। तो अष्टावक्र मुनि ने क्या किया, इनको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सभी क्या बन जाओ, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करो। तो सबकी यही महत्वाकांक्षा रहती थी, लेकिन जब मिल गया फल उसके बाद हंसने लगे, देखो कैसे टेढ़े टेढ़े चलते हैं, 8 जगह से टेढ़े हैं। तो जब इस प्रकार हंस रही थी उनके ऊपर, उन्होंने श्राप दे दिया कि तो कृष्ण पति रूप में तो प्राप्त होंगे परंतु तुम्हारा अपहरण हो जाएगा, तुमसे दूर हो जाएंगे कृष्ण। तो सब घबरा गए, अरे ये क्या आपने बोल दिया, आप हमें माफ कर दीजिए, हमने तो आपकी इतनी सेवा करी है। तो अष्टावक्र मुनि जी ने कहा शारीरिक बुद्धि मत रखो, आत्मिक बुद्धि रखो, शरीर तो आना जाना है लेकिन आत्मा शाश्वत है, इसलिए तुम शारीरिक बुद्धि मत रखो, देह आत्म बुद्धि मत रखो, आत्मा बुद्धि रखो कि हम सब आत्मा है। फिर जब उन्होंने कहा उनका ठीक कोई बात नहीं, तुम्हारा अपहरण भी कौन करेंगे, कृष्ण। उन्होंने फिर थोड़ा श्राप को माइन्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, कहा ठीक है तुम्हारा अपहरण भी कृष्ण ही करेंगे। इसलिए कृष्ण भील बनकर आते हैं और फिर अपनी खुद की रानी को लेकर के चले। तो यहां पर स्त्री का संरक्षण तो इस प्रकार तभी हो पाता है जब हम घमंड से रहित होकर के भगवान की कथाओं के प्रति ध्यान पूर्वक शरणागत होंगे। समय हो गया है, क्षमा चाहूंगा, मैंने कोई त्रुटि करी हो तो प्रभु जी मैं क्षमा करूंगा। हरे कृष्ण। श्री राधा गोविंद भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री पंच तत्व गौर निताय की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, निताय निताय गोल हरि प्रेमानंदे।
बहुत धन्यवाद देंगे प्रशांत कपूर का, हमेशा बहुत ही उत्साह देने वाला प्रोशन होता है और नींद की आदत है तो नींद से जगाने वाला प्रोशन होता है। तो थैंक यू वेरी मच जोशी। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।